नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा दर्ज की गई, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जुलाई में वर्षा और तेज होगी, जिससे खरीफ की बुआई में तेजी आएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज को जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।